डिफरेंट रिलेशनशिप्स। जैसे ये बताया कि हमारे लिए तो माँ बाप रिश्तेदार 24 घंटे 360 दिन का 365 दिन का रिश्ता है, पर अच्छा इसी बहाने कभी कभी हम रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी मौका नहीं मिलता है सोचने के लिए कि जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है उनका मेरे जीवन में क्या प्रभाव है, कभी कभी हम सोचने को मौका नहीं मिलता। तो इसी बहाने अगर हम इन चीजों के बारे में विचार करते हैं, शायद पहले इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि लोग इतने ज्यादा लाइफ में बिजी नहीं होते थे पैसा कमाने और उसको खर्च करने के लिए। तो क्योंकि हमारा लाइफ का बड़ा सारा हिस्सा कमाने और खर्च करने में और उसको हिसाब किताब जोड़ने में चला जाता है, तो हम बहुत सारे समय रिलेशनशिप को भूलने लग जाते हैं या इग्नोर करने लगते हैं या ग्रांटेड लेते हैं। वो रिलेशनशिप माँ बाप के साथ हो, पति पत्नी का हो, बच्चों के साथ हो, समाज के साथ हो, देश के साथ हो, कम्युनिटी के साथ हो या परमात्मा के साथ हो। तो इसी बहाने कम से कम जो लोग भूल जाते हैं या भूलने के कगार पर होते हैं या हम सबके जीवन में एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, एक बार पुनर्जीवित हो जाता है। जो भी हमारे यहां माताएं बैठी हैं उन सबको नमस्कार है, क्योंकि उनके बिना ये सृष्टि असंभव है, हम भी असंभव है, ये सृष्टि भी असंभव है। तो उन सबने ईश्वर की इस विशाल और इस सुंदर सृष्टि को बनाए रखा है उनमें, इसीलिए वो मां में हम ईश्वर के भगवान के रूप को देखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी बहुत आज उसकी चर्चा करने से पहले ईश्वर भक्ति करते हैं। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्र प्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं हयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्रो त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजाम वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमाम। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम, भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम। समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए आज के इस मदर्स डे में हम अपने अंदर हमारे हृदय से हमारे शरीर से मन से उनके प्रति उनका जो अवदान है उनका जो कंट्रीब्यूशन है न सिर्फ हमारे जीवन में अभी तो इस संसार के जीवन में ईश्वर की इस सृष्टि को बनाए रखने में उसको बड़ा प्यारा बनाने में उसको ज्यादा खूबसूरत बनाने में जो उनकी भूमिका है उसके लिए हम सब उनको प्रणाम करते हैं। महाभारत में जब यक्ष युधिष्ठिर संवाद बहुत बहुत प्रसिद्ध संवाद है, संवाद मतलब डायलॉग। महाभारत के अलग अलग चैप्टर में आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, उनमें से फेमस डायलॉग आप गीता के नाम से जानते हैं, जिसको आप भगवत गीता बोलते हैं, आप पढ़ते हैं, कृष्ण और अर्जुन का, वो भी एक डायलॉग है, वो महाभारत का एक चैप्टर है, जिसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है, डायलॉग होता है। और वो आज उसको अलग से हम उस बुक को छाप करके प्रचार करते हैं, सैकड़ों सालों से तो करोड़ों लोगों को उसको लाभ मिलता है। इस तरह महाभारत में अनेकों चैप्टर में अलग अलग संवाद, अलग अलग डायलॉग्स हैं, जो बड़े जीवन के अलग अलग पहलुओं को डिस्कस करते हैं, फिलोसॉफिकली या प्रैक्टिकली, सोशियली, जो भी है। उनमें से एक डायलॉग है युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में, उसमें से एक प्रश्न है कि धरती से ज्यादा भारी कौन है। मतलब धरती भारी इसीलिए है कि धरती सारा बोझ ढोती है, उसके बावजूद भी वो हिलती नहीं है, वो हमें फेंक नहीं देती है, वो सारे बोझों को ढो जाती है। पर क्या ऐसा कोई है जो धरती से भी ज्यादा सहन शक्ति रखती हो? क्योंकि धरती में आप इतना कूदते हैं, उछलते हैं, खोदते हैं, इतना जुल्म करते हैं, उसके बावजूद भी धरती आपको संभाल के रखती है और कोशिश करती है कि वो भी ना भरे अत्याचार, कितने भी हम उन पर प्यार से या गुस्से से अत्याचार या जुल्म जो भी करें। पर क्या इससे भी ज्यादा कोई और भारी है, ज्यादा सहिष्णु है, ज्यादा ज्यादा हमें संभालने वाली है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमि है। अगर संसार में कोई पृथ्वी से भी ज्यादा हेवी है, हेवी इन द सेंस ज्यादा सहिष्णु है, ज्यादा सह सकती है, वो मां है। इसीलिए यहां कोई क्वांटिटी की बात नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सहता है, वो तो नेचुरली पृथ्वी ज्यादा आपके वजन सह सकती है, आपके अत्याचार को सह सकती है। यहां क्वालिटी की बात है, क्योंकि पृथ्वी जड़ है, मैटर है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, उसके अंदर कोई एहसास नहीं है। पर मां इंसान होती है और उसके अंदर भी बच्चों की तरह, बाकियों की तरह शरीर है, मन है, हृदय है, इच्छाएं हैं, उसके बावजूद भी वो सहती है, उसको कष्ट भी होती है, बुरा भी लगता है, उसके बावजूद भी वो सहती है। इसीलिए मां पृथ्वी से बड़ी होती है। संस्कृत में जो मां शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मां शब्द जिसको माता कहते हैं, जो रूट वर्ड है वो मां है। मां का अर्थ होता है मानना, टू शो रेस्पेक्ट, और मांग माने या टू मेजर। मां जो मेजर करती है, उनके बच्चे हाथी के तरह भी फूल जाएं तो भी घर आए तो कहेंगे कितना दुबला पतला हो गया। वो हर बात को नापती रहते कि मेरा बच्चा है। और दूसरा है, हर वक्त तो उसके खाने पीने, उसके शरीर से मन तक हर चीज की ख्याल रखती है। आप 60 साल के हो जाए या 70 साल के हो जाए, आप दुनिया पर राज करें, आप प्रेसिडेंट हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं या देश चलाते हैं, पर आपके बारे में अगर कोई सिंसियरली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अगर कोई सोचता है या सोचती है, वो आपके मां और बाप होते हैं, और खास करके मां। पत्नियां शिकायतें कर सकती हैं या पति शिकायत कर सकते हैं, हम भी बड़े ख्याल रखते हैं, सोचते हैं, पर उसमें एक्सपेक्टेशन जुड़ा होता है। वो इतना प्योर नहीं होता है, उस चाहत में, उस भले में थोड़ी चाहत बनी रहती है कि उसके वो कुछ हो जाने पर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ।
पर मां को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि उसके होने पर मुझे कुछ फायदा होगा, मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा। वो जो बिना किसी आशा के जो जो आपके और हमारी ख्याल रखती है, हम खुद बुजुर्ग हो जाते हैं उसके बावजूद भी हमारी मां सोचती है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ठीक ठाक है कि नहीं है। ये निश्चल स्नेह दुनिया में बहुत कम जगह मिलता है, बहुत कम रिलेशनशिप में देखने को मिलता है, और जहां मिलता है उसमें अगर आप भी नापें वो सबसे ऊंचे स्थान पर मां को आप पाएंगे। इसीलिए मां पूज्य होती है, जैसे आज भी होती है, पहले भी बता रहा है कि भाई मां हमारे जीवन में मां का स्थान ज्यादा बड़ा है कि पापा का स्थान ज्यादा बड़ा है। कभी कभी डिस्कस करते हैं, कभी मां बाप एक दूसरे से भी लड़ते हैं। तो ये भी उतना ही ह्यूमन बींग के जब से पैदा हुआ तब से ये झगड़ा तब से है, पर इसका समाधान भी हर जगह होता है। मातृस्तु गौरवादन्य पितृनन्य तुम्हें निरे दुष्करम कुरुते माता विवर्धयतिया प्रजा। ये महाभारत की पंक्ति है। कुछ लोग को कुछों को लगता है कि पापा का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कुछ लोगों को लगता है मां का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, पर महर्षि व्यास लिखते हैं और महर्षि व्यास जैसे करोड़ों ऋषि मुनि लिखते हैं, मां का स्थान ज्यादा होती है इंसान के जीवन में। ये सिर्फ इंसान नहीं है, हमारी तो आदत पड़ चुकी है इंसान के बारे में बोलने सोचने की। पर किसी भी प्राणी को आप लीजिए, आप बाहर निकल के दो चिड़ियों को देखिए, ये लेक में जाकर के देखिए, वो कौओं को हंसों को देखिए, बगुलों को देखिए, जंगल में जाकर के बंदर से लेकर के गाय तक देखिए, किसी को भी देखिए, पुरुष से ज्यादा बाप से ज्यादा मां का कंट्रीब्यूशन होता है। ये सिर्फ इंसान के नस्ल में नहीं, मनुष्य जाति में नहीं, हर प्राणी में यही है। माओं का जो अवदान है वह अतुलनीय होता है। इसीलिए सभी एक स्वर में स्वीकार करते हैं। और बड़े मजेदार, देखिए हम सब मानते हैं कि हमारी मां का कोई सानी नहीं है, पर खुद के बारे में कभी कभी बीवी से लड़ते रहते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अपने बच्चों के बारे में। पर अपने मां के बारे में किसी को शक नहीं है, अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा शक रहता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है कि मेरी पत्नी का ज्यादा होता है। क्योंकि जो 9 महीने का या 10 महीने का जो कष्ट जो गर्भधारण है, उसको जो बाहर के लोग कष्ट कहें, माओं के लिए वो कष्ट वो कैसे झेलते हैं, वो अपने आप में आपके जीवन के सारे बड़े बड़े सैक्रिफाइस को सामने वो छोटा पड़ जाता है। और उसके बाद जो शारीरिक मानसिक रूप से मां का जो सैक्रिफाइस है वो किसी भी अनकंपेरेबल होता है। किसी व्यक्ति ने ये मैंने कहीं से उठाया है, उधार लिया है, बड़े अच्छे अच्छे विचार जो कहीं मिलते हैं, मां को किसी ने परिभाषित किया है। जब आप स्लाइड में साइड वाले परिभाषित पढ़ते हैं तो फोटो को भी जरा बारीकी से देखिएगा, उसमें वो फोटो में ही आपकी माओ के अलग अलग जीवन में जो हमारा प्रभाव है उसको भी थोड़ा वो आंक पाएंगे, उसको भी आप थोड़ा असेस करने में आपको आसानी होगी। तो वो हमारे लिए मां है, खाना बनाने वाली भी वही है, जिसको भी पूछो मां के हाथ के खाना पसंद करता है। हो सकता है बहुत सारे कल्चर में धीरे धीरे ये मॉडर्न कल्चर में ये चेंजेस होने लगा है, अब माओं से ज्यादा रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा अच्छा लगता है, पर वहां जहां मां के हाथ के खाना कम मिलता है
वो खाना भी बनाती है, वो आपकी पालना पालती भी है, आपकी नानी भी है, आपकी नर्स भी है, आपको ड्राइव भी करती है। अब स्कूलों में देखिएगा कितने परसेंट जो ड्राइव करके बच्चों को छोड़ने आते लेने आते, परसेंटेज निकालिएगा। तो ज्यादा माँ ही होंगी वो 56, ये 60-40 की नहीं है, वो तो 80-20 की भी उससे ज्यादा बनेगा। माँ ही छोड़ने आती लेने आती, वो जॉब कर, ऐसे भी माएं आती है जो जॉब भी करती है, ऐसा नहीं कि वो कोई खाली जो 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 होम मेकर है वही छोड़ने आती है। पुरुषों को ऑफिस की चिंता ज्यादा, देश की चिंता, दुनिया की चिंता, कम्युनिटी की चिंता, रिलीजन की चिंता, बहुत सारी चिंता रहती है। मतलब ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, पर ये फैक्ट है। और मां अगर उतनी चिंता छोड़ दे तो बच्चे तो फिर कहीं के में रहेंगे, कम्युनिटी के भला करते करते बच्चे तो गटर में चले जाएंगे। तो शी जे हैंडीमैन, आपकी छोटी छोटी चीजों का वही ठीक करती है, वही आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर है। बच्चों को डर लगता है, वही आपका काउंसलर है, वही आपका कंफर्टर है। और मां का कोई हॉलीडेज नहीं होता है, ऑफिस में मिलता है। बापों को भी काफी हॉलीडेज मिलते हैं, पर माओं का कोई हॉलीडेज नहीं होता है। मतलब पापाओं में हम भी आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इधर ही कहते हैं, ये साथ में जाते हैं। शी डजंट सीक पे डेज ऑफ, उसके लिए बच्चों के लिए ना उसका कोई सीक डे होता है, ना कोई ऑफ डे होता है, ना कोई पे ऑफ होता है। एंड गेट्स पेड इन हग्स एंड किसेस, उसको जो मिलता है और वो जो खुश होती है, बस इतने में बच्चे उसको थोड़ा प्यार से मां बोल दें। बस ऐसा नहीं कि कोई रेस्पेक्ट भी नहीं मालती, बस झड़क के मां बोले, बड़ा प्यार से बोल दे मां, बस उतने में ही सारा जितना भी गुस्सा होगा, जो कुछ होगा, सब खत्म हो जाता है। और उतने में नहीं बनती है तो बस जोर से थोड़ा हक कर लो, बस सारे बुराई माफ। ये पापा लोग आसानी से माफ नहीं करते बच्चों को, माओं को तो बस कितनी भी आप गड़बड़ करके आओ, कितने में गुस्से हो, थोड़ा प्यार से उस दिन मुलायम हो जाए बच्चे, और नहीं हुए तो थोड़ा और जोर से 2-4 बार हक कर लो, छोड़ो नहीं, चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना, छोड़ूंगी नहीं आगे से। ये मुश्किल होता है समाज में ना, मां को छोड़कर आप कहीं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दुनिया में हमारे बहुत सारे गुरु होते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही सीखते हैं, आप तो बहुत जगह से, हजारों जगह से सीखते हैं। वो अलग बात है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस है कि नहीं, कि आप कहां से सीख रहे हैं और आपको कौन कौन सिखा रहा है, किस किस माध्यम से सिखा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां कहां से सीख रहे हैं। ये तो एक मिसपरसेप्शन है कि बस स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर ही टीचर होते हैं, और आजकल एक नए टीचर पैदा हुए हैं 200-300 साल से रिलीजियस गुरु, और वो सबसे ज्यादा बड़े टीचर बनते फिरते हैं, गुरुजी, सदगुरु महाराज, गुरुजी वगैरह वगैरह वगैरह। पर इंसान अपने जीवनों में लाखों सैकड़ों जगह से सीखता है। आप किसी से गाड़ी भी सीखते हैं, किसी से बिजनेस करना सीख, किसी से बात करना सीखते हैं। जरूरी नहीं कि कोई आपको सिखाता हो, आप ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इनडायरेक्टली आप सीखते हैं, डायरेक्टली सीखते हैं। आपके लाइफ में आप 70-80-90 मृत्यु तक भी आपके लाइफ में आप चेंज लाते हैं, दूसरों को देखते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है बुरा लगता है, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। तो हमारे जीवन में तो हजारों तरह के गुरु होते हैं, पर जो मां होती है वो पहली गुरु होती है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जो नकल करना सीखता है वो मां से सीखने लगता है। इसलिए हमारे यहां कंसेप्शन के, गर्भाधान के लिए हमारे धर्मशास्त्र में प्राचीन काल में बड़े सारे नियम होते थे, और माओं के लिए होते थे,
किसी किसी को लग सकता है, जो जन लगता है कि ये थोड़ा स्त्रियों के प्रति वो जेंडर बायसनेस है, नहीं, क्योंकि बच्चे का जो पहला रिलेशनशिप होता है वो कंसेप्शन से लेकर के बच्चा बाहर आने तक वो माओ के साथ होता है, इसलिए उनको काफी काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, उनके मन में शरीर में जिस तरह के विचार होते हैं, जिस तरह के वाइब्रेशन होता है वो बच्चों को इफेक्ट करता है। इसलिए जीवन में अगर कोई पहला गुरु है, द फर्स्ट गुरु अ टीचर इन आवर लाइफ, इट इज आवर मदर। खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो भी बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, सारी पढ़ाई पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चा हम भाषा सीखते हैं तो मां से सीखते हैं ना, पहली भाषा तो मां से आती है, इसीलिए दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उनको जो अपनी भाषा होती है उसको हम मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा, क्योंकि वो भाषा जो मां से सीखी जाती है, मां के कारण हमारे डीएनए में आती है, हमारे सोच में विचार में आता है, वही मातृभाषा जो हमारे कल्चर को हमारे चीजों को डिफाइन करता है। अगर माएं वो भाषा ना बोले तो स्कूल और कॉलेज से सीखी हुई भाषाएं कितनी भी हमारे अंदर वो परफेक्शन आए वो आर्टिफिशियल होता है। जब भी आप सपने में देखते हैं, गाढ़ नींद से जागते हैं, चिल्लाते हैं तो आपके मुंह से वो भाषा निकलती है जो बचपन में आपके अंदर आपके अनजाने में डाल दी गई थी, वो नहीं जो आपने यूनिवर्सिटीज में स्कूल में कॉलेज में सीखा था, जिससे आप प्रोफेशनल डील करते हैं। इसीलिए मां की भाषा होती है, इसीलिए जो संस्कार है, जो भाषा है, जो इंडिविजुअल जो 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 कैरेक्टर है बच्चों का, इसमें मां बाप दोनों का रोल होता है, पर मां की इनिशियल रोल जरूर बहुत होता है। जो आप महाभारत में वो छोटी सी स्टोरी सुनते हैं अभिमन्यु के बारे में कि सुभद्रा और अर्जुन डिस्कस कर रहे थे व्यूह रचना के बारे में, स्ट्रेटेजी मेकिंग के बारे में, और अभिमन्यु गर्भ में था तो जितना सुना तो उसी को उसके याद रहा। इसमें कंट्रीब्यूशन अर्जुन का नहीं है, सुभद्रा का है। उसने जितना ध्यान से सुना, इसमें जो सीख आपको दी गई है वो सच है कि झूठ है ये मुझे नहीं पता, वो तो साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे बताएंगे, या रिसर्च किया होगा वो अलग बात है, पर जो संदेश है जो मैसेज है वही है कि सुभद्रा जब तक सुनती रही अभिमन्यु के अंदर अवेयरनेस आता गया, सुभद्रा सो गई, जहां सो गई वहीं से अभिमन्यु का समझ बंद हो गया था। ये कहानी थी, ये कितना सच है वो अलग बात है, आप पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसकी रियलिटी के बारे में डिस्क, पर जो मैसेज है वो यही है कि पहली गुरु मां होती है, वो जिस तरह के अपने आप को ढालती है बनाती है बच्चों को, वो सारा संस्कार जाता है। और इसीलिए शास्त्र में कहा, नास्ति मात्र समो गुरु, देयर इज नो टीचर कंपेरेबल विथ मदर। मां बाप के बच्चे जो मां बाप से सीखते हैं, ठीक है, जो 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 स्कूल करिकुलम सीखते हैं वो तो आज टीचर मां बाप से सीखते हैं, अगर मां बाप पढ़े लिखे हैं वो सब्जेक्ट को जानते हैं पढ़ाते हैं वो अलग बात है, पर हमारे जीवन में हमने ऐसी बहुत चीजें हमारे ज्ञान है जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर से नहीं सीखे, ना हमें किसी ने सिखाया है, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करके सीखा है, और उनमें से ज्यादातर हमने मां बाप को लेकर सीखा है, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है। कभी कभी हमें भी नहीं समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों मेरा चरित्र ऐसा है, मैं चाहता हूं बदलने के लिए क्यों नहीं बदल पाता है। उसमें बहुत सारा रोल आपका आपके पुराने कर्मों का संस्कार है, पर उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपके बचपन में मां बाप के रोल होते हैं, उन्होंने क्या सिखाया वो नहीं, उन्होंने हमारे सामने हमारे कैसे बिहेव किया एक दूसरे के साथ, हमारे साथ, दुनिया के साथ, वो हमारे संस्कारों में जाता है। हम जिस तरह अपने बच्चों के सामने बिहेव करते हैं, जिस तरह रिलेशनशिप को उसके साथ डील करते हैं, बच्चे वो सब उनके अंदर जाता है। विदाउट देयर नोइंग दे लर्न हाउ टू बिहेव। इवन जो पति पत्नी हम अगर बच्चों के सामने लड़ते हैं या प्यार से बात करते हैं या जिस तरह के भी रिलेशनशिप में जिस तरह के भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हमें लगता है कि बच्चे हैं वो क्या समझते होंगे, वो बड़े होकर के उन्हीं चीजों से उनकी लाइफ डिफाइन होता है, या तो वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इनके तरह नहीं बनना है, या वो डिसाइड, या अगर उनका दिमाग कम चलता है वो बड़े होने पर वैसा ही डील करने लगते हैं अपने स्पाउस से, पति से, पत्नी से, जैसे मां बाप एक दूसरे से करते रहे। हम उनको कितना सिखाते रहे कि सच बोलो सच बोलो सच बोलो, वो तब तक सच बोलते रहेंगे जब तक आपका डांट हो, जब तक आपका कंट्रोल हो, जब तक आप सामने हैं। अगर मां बाप खुद अपने जीवन में उस सच्चाई को नहीं रखते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं सच बोलने की ट्रिक, सीख जाते हैं उसकी स्ट्रैटेजी, सीख जाते हैं उसकी टेक्निक, सीख जाते हैं। क्योंकि मां बाप जब सच बोलने के लिए प्रेशर करते हैं तो वो मां बाप की ट्रिक होता है, ये बच्चे समझ जाते हैं। मतलब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 100% सच बोलो, पर वो बोलते हैं कि सच बोलो, तो बच्चे ये सीखते हैं। हमें सिखाने की जरूरत नहीं होता है, वो हमारे व्यवहार से, वो हमारे अंदर को पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे अंदर को, वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि एक्सप्रेस करने का मतलब है वो उन पर खतरा लाएंगे, क्योंकि मां बाप समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चा को पता है कि हम, फिर वो मां बाप फिर और स्ट्रिक्ट होंगे और नए नए तरीके अपनाएंगे। उनको पता है कि मां बाप को इल्यूशन में रहने दे कि मैं भोला भाला हूं, मुझे समझ में नहीं आता है, तो वो अपना जो करते हैं करें, मैं भी अपना जो करता है करता रहूंगा। तो ध्यान रखिए, इवन हमारी आपकी जो हम उम्र में बड़े हैं, हमारी हमारी आपकी भी कभी कभी आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं दूसरे टाइप का क्यों नहीं बन पाया, मैं अपने पड़ोसी की तरह क्यों नहीं हूं, मैं अपने दोस्त की तरह क्यों नहीं हूं। उसमें जो मेरे पुराने कर्मों का संस्कार है तो है ही, पर पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक जिस तरह मैंने अपने मां बाप को देखा है करते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, उसका पूरा का पूरा मेरे अंदर है। इसीलिए वो हमारे पहले गुरु होते हैं। इसीलिए ये गलतफहमी मत रहिए कि आपके बच्चे अच्छे बनेंगे क्योंकि संडे स्कूल में आते हैं, अच्छे बनेंगे क्योंकि उनके स्कूल में अच्छे टीचर हैं। वो संडे स्कूल में या वीकडे स्कूल में जाकर के बहुत कुछ किताबी ज्ञान सीखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो वही सीखेंगे जो उनके घर में मां बाप करते हैं, जो उनके पड़ोसी करते हैं, जो उनके टीचर्स करते हैं, जो रियल लाइफ में होता है वो वही सीखते हैं। इसलिए मां के समान कोई गुरु संसार में नहीं होता है। जब हमारे सामने चार लोग होते हैं और हम चार लोगों से प्यार करते हैं, भैया हमें चार लोग पसंद हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कम बहुत होता है जब हम प्यार बांटते हैं, पर जो मां प्यार बांटती है उसके दो बच्चे हैं या चार बच्चे हैं या आठ बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं, उसमें कोई कम बहुत नहीं होता है। वो हर बच्चे के लिए जो प्यार होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो अपने आप में पूरा होता है, वो अपने आप में होल होता है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स डिवाइडेड, कितने में वो बंट जाए, पर हरेक के लिए जो प्यार होता है पूरा, उसमें कोई 1% की कमी नहीं आती है। कभी कभी बचपन में हमें लगता होगा वह हमारे बच्चों को लगता होगा कि ये मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती है, मेरी बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करती है, वह छोटे को ज्यादा प्यार करता है करती है, बच्चे कभी कभी गुस्से में बोलते हैं, वो इसीलिए कि समझ नहीं होता है। हाँ, केयरिंग करना अलग बात है, कोई कमजोर है मां का केयरिंग वहां ज्यादा दिखता है, जो इंडिपेंडेंट हो सकता है वहां मां का केयरिंग कम दिखता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हेल्प के बिना वो चल सकता है, यहां मेरे हेल्प के बिना वो नहीं चल सकता है। तो बाहरी एक्टिविटी जो हमें लगता है कि मां पार्शियलिटी करती है, पर वो प्यार उतना ही पूर्ण है, वो प्रैक्टिकली उसको पता है कहां मित्र मेरी कितनी जरूरत है। इसका अर्थ नहीं कि प्यार में कोई कमी आए, चोट आए तो उतना ही, आपको जितना दर्द होता है उससे ज्यादा मां को होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतेरपि। मां बाप जीव जो परिश्रम करते हैं, जो कष्ट सहते हैं बच्चों को पैदा करने में, हमें पैदा करने में और पालने में, सैकड़ों साल हजारों सालों तक भी अगर हम चुकाने की कोशिश करते रहें, यह असंभव है उसको चुका पाना। इसीलिए हमारे यहां एक कंसेप्ट पैदा किया गया हमारे धर्मशास्त्रों में कि हर व्यक्ति पैदा होने के बाद उसको तीन तरह के ऋण उसके जीवन में होते हैं, तीन तरह के डेब्ट्स होते हैं। और जब तक, इसीलिए हमारे यहां जनेऊ संस्कार की परंपरा बनी, जो आप जनेऊ डालते हैं, पता नहीं यहां तो कोई होगा नहीं, अगर कोई एक आधा गलती से बच भी गया होगा, उसमें तीन जनेऊ आप देखेंगे, वो तीन धागे ये बताने के लिए होते हैं कि आपके जीवन में ये तीन ऋण हैं, कोशिश करते रहना इनको चुकाने की, क्योंकि चुकाना मुश्किल है, इसलिए लाइफ लॉन्ग इसको झेलते रहना, डालते रहना, ये याद दिलाएंगे। मातृ ऋण, माता पिता दोनों आ जाते हैं। ऋषि ऋण, जो ज्ञान तुमने लिया है, जो तू पैदा हुए, जो पले बढ़े, जिनके कारण जो मां और बाप हैं, ऋषि ऋण जो तुमने तुम्हारे अंदर जो समझदारी आई, वो डायरेक्ट टीचर हो या इनडायरेक्ट टीचर हो, इनडायरेक्ट टीचर मतलब आप किसी के किताब पढ़ते हैं, समझते हैं, वो किताब लेखक भी तो आपका गुरु बना ना, क्योंकि वो किताब नहीं होता तो आपको ज्ञान कैसे आता। तो ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट आपके सामने टीचर बैठा है वही आपका टीचर है, लाखों साल पहले जो पैदा हुआ वो भी तो आपका टीचर है, जिसने कोई किताब लिखा, कोई ज्ञान देकर गया। और देव ऋण, ये संसार में जो प्राकृतिक चीजें हैं, हवा, पानी, पवन, आग, धरती, आकाश, सूर्य, चांद, जंगल और परमात्मा, जिनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इन तीनों के प्रति तुम्हारा ऋण है, डेब्ट है लाइफ में। इनको हमेशा ये तीन धागे याद दिलाने के लिए होते हैं, इनको कोशिश करना जीवन भर याद रखो और कोशिश करो जितना हो सके चुकाने की, या संभव है चुकाना, पर यू हैव टू ट्राई इट। इसीलिए कहा अस्मिन् जगति महत्यपि किमपि न तत्त्वस्तु विभसा विहितम्। इस संसार में ऐसा कोई चीज ईश्वर ने नहीं बनाया, अनिमित्त वत्सलाया भवति यतो मातुरुपकारः, कि वो जो निश्चल प्रेम है मां का, जिसमें किसी भी तरह का कोई छल नहीं, कपट नहीं, आशा नहीं, ऐसा जो निर्मल निश्चल प्रेम है, उस प्रेम को चुकाने के लिए, उस प्रेम के बदले प्रेम देने के लिए ईश्वर ने इस सृष्टि में ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है जिसमें तुम दावा कर सकते हो कि मां मैं, देखो तुमने मुझसे इतना प्यार किया था, देखो मैंने तुम्हारा आज चुका दिया। ईश्वर ने बनाया ही नहीं कि ऐसा कोई चीज जो तुम कभी दावा कर सको कि मैं उसको चुकाऊंगा। आस्तन्य पाना जननी पशु नाम आदर लाभाच नराधमा नाम आगेह कर्मा वधि मध्यमा नाम आजीविता तीर्थमिवोत्तमानाम। मां के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो तीन तरह के लोग होते हैं। दूध पीने तक या मां की परवरिश पाने तक जो मां को मां समझे, रेस्पेक्ट करे, वो जानवर होते हैं। इंसानों में कोई ऐसा हो तो भी वो जानवर होता है, वो अधम कैटेगरी का होता है, बड़ा वर्स्ट कैटेगरी का। दूसरे कैटेगरी के होते हैं वो मां बाप, तब तक मां बाप है जब तक शादी ना हो जाए, उसके बाद तो हमारी लाइफ अलग, आपकी लाइफ अलग। हमने कहानी पढ़ी थी, टाइम हो गया पर सुनाने लायक है। उस दिन रात को 10 बज गए, मिस्टर गुप्ता ऑफिस से घर नहीं आए, बीबी ने 10 बार फोन किया, फोन नहीं उठाया। रात को 9:30 बजे गुप्ता साहब आए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी गुस्से में लाल फीले होकर के दरवाजा खोली, बोला ये कोई टाइम है आने का? कहां थे ऑफिस में? ऑफिस में तो फोन किया था, थे ही नहीं 5 बजे के बाद से। 5 बार आपके सेल फोन पर कर चुका हूं, ऑफिस कर चुकी हूं, कहां थे? वो बोलने से पहले ही वो सारा गुस्सा निकल आया। तो बोलते क्यों नहीं हो? जरा बोल तो रहा हूं, जरा चुप तो हो जाए, बोलने का मौका दो। घर गया था, घर गया था तो ऑफिस से सीधा घर चला गया। क्यों? मां को लाने के लिए। तुझे शर्म नहीं आता है? तुम मां को मिले, मुझे बिना पूछे मां को लाने चला गया? अरे तुम समझ नहीं पाओगे, मतलब घर में अंदर घुसने दो, बता रहा हूं घर में बड़ी समस्या है, भाइयों ने निकाल दिया, मां का फोन आया तो लाना, लाने के लिए जाना पड़ा ऑफिस से, बताने को टाइम नहीं मिला और गांव में वो लगता नहीं नेटवर्क, तो जाना पड़ा। जो शर्म नहीं आता है? जितना तनख्वाह कमाते हो बच्चा पालना मुश्किल होता है, मां को ले आओगे यहां पालने के लिए, कौन पालेगी? कितना पैसा कमाते हो? शुरू हो गया। तुम्हारे भाइयों को शर्म नहीं आता है? वो भाई तुम्हारे इतने समझदार है, नहीं रख पाए, तेरे पास ज्यादा पैसा है रखने के लिए। यार सुन तो लो, वो भाई रख नहीं सकते ना मेरे भाई, मैं बोलता रहा सुन तो लो। और तुम्हारी मां को शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे साथ पैर उठा के आ गई? कहां है तुम्हारी मां? मां साड़ी पहन करके थोड़ा शर्मा करके अंदर आई, तो बीवी ने मां को देखा, बोला मां तुम आई हो? ये तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी मां को लाने गया था? हाउ स्वीट डार्लिंग, ये क्या हो गया? मां तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ना, अरे तुम्हारे भाइयों ने घर से निकाल दिया तो क्या करता, दामाद जी को फोन किया, दामाद ऑफिस छोड़ के भागे भागे आए और मुझे लेकर के आए। कि तुम पहले नहीं बता सकते थे कि मेरी मां को लाने गए थे? मां सबकी होती है, पत्नी की भी मां उतनी प्यारी होनी चाहिए जितने पति की भी मां प्यारी होनी चाहिए। जब हम पति पत्नी दोनों संसार बनाते हैं तो सबकी एक एक मां और एक एक बाप होता है। सबको रिस्पेक्ट करना दोनों का काम है। अगर मुझे मेरी मां और बाप मेरे लिए पूज्य हैं तो मेरी पत्नी के लिए उसकी मां बाप भी पूज्य हैं। और सबको यह हक होना चाहिए कि अपने मां बाप का आदर कर सकें। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद मां बाप को किसी भी तरह के प्रेशर से, किसी भी तरह के कारण से अपने मां बाप को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। वो मध्यम कैटेगरी के होते हैं। तब तक तो मां मां बाप बाप होते थे कि तुम्हारे लिए मैं हूं, पर अब वो भूल जाते हैं अपने बच्चे और अपने स्पाउस के चक्कर में। तीसरे कैटेगरी के मां बच्चे होते हैं। आजीविता तीर्थमिवोत्तमानम, जो जीवन पर्यंत ये समझते रहते हैं मां का चरण मेरे लिए तीर्थ है, पिलग्रिमेज है, मुझे अगर जीवन में कहीं अगर कुछ शांति मिलेगी वो तीर्थ जाकर नहीं, जो मेरी मां है बाप है उनकी सेवा करके ही मिल पाएगी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं, तीर्थ जाने से अच्छा है कि मैं मां बाप के पास जाऊं, तीर्थ घर में पूजा करने से अच्छा है कि मैं अपने मां बाप का सेवा करूं, उनको सम्मान दूं। अदूरगमनम तीर्थम अदेह दमनम ततः, जो मां की सेवा करते हैं वो बिना दूर जाए तीर्थ की पुण्य पाते हैं, वो बिना तपस्या शरीर को तपाए वो तपस्या का फल पाते हैं। अनंभ संभवम, वो बिना पानी में नहाए स्नान का फायदा उठाते हैं। मातुश चरण पंकजम, जो मां के चरण की पूजा करते हैं।
समाप्त करने से पहले किसी अमेरिकन लड़की ने अपनी मां के बारे में एक पोएम लिखा था, तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप एंजॉय करिए। इफ आई कुड गिव यू ए डायमंड्स फॉर ईच टीयर यू क्राइड फॉर मी, इफ आई कुड गिव यू सैफायर्स फॉर ईच ट्रूथ यू हैव हेल्प्ड मी सो सी, इफ आई कुड गिव यू रूबीज फॉर द हार्टएक दैट यू हैव नोन, इफ आई कुड गिव यू पर्ल्स फॉर द विजडम दैट यू हैव शोन, then you will have a treasure mother that would mount up to the skies, that would almost match the sparkle in your kind and loving eyes, but I have no pearls, no diamonds, as I am sure you are well aware, so I can only give you gifts such as my devotion, love and care. Sajjano deviyo, jab tak aap zinda rahe, hum zinda rahe, maa baap ko samman kare, जितना हो सके उनकी सेवा करें, क्योंकि इसीलिए नहीं है कि आप मां बाप को सिर्फ सम्मान दिखाते हैं, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, वो भी आपको सम्मान करना छोड़ देंगे, बुढ़ापा में हमारा ख्याल रखना भी वो छोड़ देंगे, हमें सम्मान करना छोड़ देंगे, अगर हम अपने बूढ़े मां बाप का ख्याल ना रखें, उनको सम्मान ना दें। आज के इस मातृ दिवस पर दोबारा आप सबको बधाइयां देते हैं, जो माएं यहां बैठी हुई हैं उन सबको प्रणाम करते हैं कि आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ओम शांति।